والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, وہاجروا, اور ہجرت کی, مکہ چھوڑا مدینہ میں آگئے, گھر چھوڑے, بار چھوڑے, محبتیں چھوڑی, موسم چھوڑے, اپنی کتنے سالوں کی وہاں جو نسبتیں تھیں وہ چھوڑی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا, کوئی پیدل گیا, کوئی گھوڑوں پہ گیا, کوئی چھپتے چھپاتے گیا, کوئی پانی کے راستے سے گیا, کوئی پہلے ایک ملک میں گیا پھر ادھر سے گیا, یعنی جو سٹرگل کر سکتے تھے اللہ کے راستے میں وہ کی. اور ان کے ساتھ دوسرا گروہ, والذین آووا ونصروا, وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی. آوا یو وی ہوتا ہے پناہ دینا, جگہ ٹھیک کرنا, کسی کے لیے بازو کھول دینے کہ آؤ, موسٹ ویلکم, ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں, انصار کی طرف اشارہ ہے, جگہ دی, پھر مدد بھی کی. اولائک ہم المومنون حقا, یہ ہیں سچے مومن. اللہ اکبر. تو باقی کیا ہیں پھر, ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. ان لوگوں نے اپنے دعووں کی دلیل دے دی, کر کے دکھا دیا. ایسے لگتا ہے کہ سچے مومن تو یہی ہیں. کیا مطلب ہے کہ جو ابھی ہجرت نہیں کر کے آئے ابھی ان کے ایمان کی آپ گواہی نہیں دے سکتے؟ پتہ نہیں سچے ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے. جب تک انسان دین کے لیے قربانی نہیں دیتا نا, جب تک ایک انسان کا دل نہیں کھل جاتا نا دین کے لیے, تب تک اس کے اندر ابھی صحیح ایمان آیا کہ نہیں آیا اس کا آپ یقین نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہے نا, یہ کوئی کھیل نہیں ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کہتے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, میرے کتنے نمبر, تمہارے کتنے نمبر, یہ کورس نہیں ہے, یہ اصل کامیابی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ دل کتنا کھل رہا ہے. اسلام سوتیلا بچہ لگ رہا ہے کہ اب اپنا لگنے لگ گیا, بیگانہ ہے یا اپنا بن گیا, کبھی کبھی آیا ہوا مہمان ہے جس کو باہر سے ایک دروازہ کھول کے گیسٹ روم میں بٹھایا ہوا ہے اور باقی کمروں میں آنے کی اس کو اجازت نہیں, یا ہم نے اس کو کہا ہے کہ اسلام صاحب آپ جس کمرے میں آئیں تشریف رکھیں, یہ آپ کا اپنا گھر ہے. اگر دل نہیں کھلا نا, ابھی دل بخل کا بھرا ہوا ہے, ابھی دل میں گندے وسوسات ہے, ابھی بھی نجوا کی عادت ہے, ابھی بھی خسر بسر کی عادت ہے, ابھی بھی بدگمانیاں اور بدسنی کی عادت ہے, تو پھر دعا کی ضرورت ہے. سورت انفال اور توبہ پڑھتے ہوئے اگر ہمارا دل نہیں کھولا نا, پھر آگے بہت ساری صورتیں اور گزریں گی, پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پھر مدنی صورتیں آئیں تو دل کھلے. یہ صورتیں جو ہے نا, یہ بندے کو اپنا محاسبہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم سچے مومن ہیں کہ نہیں, کیا ہماری زندگی میں اسلام اب سب سے قیمتی ہو گیا. اسلام کو قرآن کر لیں, کیونکہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم بون مسلم ہیں, لیکن بون مسلمس کو نماز بھی ٹھیک نہ پڑھنی آتی ہو, بون مسلم کو اپنی زندگی کا پیکج قرآن پاک صحیح پڑھنا نہ آتا ہو, اس کو سمجھ نہ سکتے ہوں, تو کیا وہ پھر سچے مومن ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو اللہ نے کہا لہم مغفرتم و رزق کریم, ان کے لیے بخشش ہے اور رزق کریم ہے, عزت والی روزی ہے. کیونکہ علیہ السلام یحتم ما کان قبلہ, اسلام اپنی پہلے کی ساری جو گناہ ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے, والہجرت تحدم ما کان قبلہا, اور ہجرت بھی پچھلے سارے گناہوں کو ڈھا دیتی ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہماری بھی تو زندگیوں نے کچھ ہجرت کی نا, ہماری بھی تو سوچیں بدلی, ہماری بھی تو سوچ بدلی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ڈھونڈو کہ تم کس جگہ پہ ہو. اب دیکھیے کہ زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں, ایک کیا ہے, فرائض کی سطح پہ جی لیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ اور اس کے ساتھ گھرداری اور دنیا داری, اللہ دے دے گا جنت جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا دل چاہے گا, لیکن رزق موجود ہے. لیکن ایک جینا ہوتا ہے قربانی کی سطح پہ جینا, عزم کی راہ پہ جینا. ان آیتوں پہ اگر ہم انصار اور مہاجرین کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں اور اپنے لیے عمل کی باتیں لیں, تو ہم ذرا تقابل تو کر کے دیکھیں ان میں اور ہم میں فرق کیا تھا. وہ لوگ ایک سے ایک بڑھ کر قربانی کرنا چاہتے تھے, ہم جان بچانا چاہتے ہیں. الا ماشاءاللہ, اللہ کے نبی کے مدینہ آنے سے لے کے دیکھ لیجئے, سب اپنے دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کدھر آپ کی سواری رکے اور ہم آپ کے میزبان بنے. अल्लाह ने अबू अयूब अल अंसारी को ये कुर्बानी दे एक मौका दिया। ये छोटी बात नहीं थी, ये आज की मेहमान नवाजियां नहीं थी कि कोई बाहर से गेस्ट आया और आप पिकअप करने गए, एयरपोर्ट पे गए, अपनी बड़ी सी गाड़ी लेके गए, खुशी खुशी आपने उनको बिठाया, आए, बेशुमार खाने खिलाए। अल्लाह के नबी उस वक़्त इस प्रोटोकॉल के नहीं थे, उनकी जान के लाले पड़े हुए थे। पीछे से लोगों ने 100 ऊँटों की कीमत रखी भी थी, जिंदा और मुर्दा पकड़े जाने की बातें थी। कोई एक जासूस आता जिसके घर में ये ठहरते वहीं जाके कत्ल कर जाता तो मेज़बान भी जेल में चला जाता। उस दौर में अल्लाह के नबी के सहाबा ने आपको जगह दी, हम जैसे नहीं थे, झूमने वाले और सिर्फ गुनगुनाने वाले, ऐसे छोड़ के नहीं जाने वाले थे अल्लाह के नबी को कि चलो जी आज कर लिया, अब दिल भर गया, अब आप जाइए और कहीं और चले जाएं, हम आपके बारे में कुर्बानियां नहीं कबूल कर सकते, बहुत सख्त ज़िंदगी हो गई, आप आ गए, अब हर वक्त जंगों की धमकियां मिल रही हैं और उधर से मुनाफिकों ने सर उठा लिया है। कल तक यहूद से इतनी अच्छी हमारी दोस्तियां थी, प्यार मोहब्बत से रहते थे, अब तो दुश्मनियां हो गई। एक जुमला नहीं मिलता, हर बंदा इस कोशिश में था कि मेरा कबूल कब होता है, मुझसे कब लिया जाता है। किसी को लेने की इतनी हिर्स नहीं हो सकती जितनी उनको देने की हिर्स थी। और याद रखिए, ऐसे ही लोग तारीख साज होते हैं, हम लोग खुद साज हैं। लिख लें दो लफ्ज, खुद साज और तारीख साज। खुद साज खुद को बनाते हैं, हर वक्त लेने के लिए बेचैन, मुझे क्या मिले, मेरा घर कैसे बड़ा हो, मेरा कमरा कैसे बड़ा हो, मेरे बच्चों को कैसे कोई बेनिफिट मिल जाए, कोई मुझे काम करने के बेनिफिट क्या मिल जाए, मेरी वजह से किसी चार को फायदा हो जाए, मैं कहीं जाता आता हूँ चलो मेरी वजह से मेरे रिश्तेदारों को भी वहाँ ऐसे ही बुला लिया जाए। वो ये नहीं थे, वो मराहत लेने वाले लोग नहीं थे, वो देने वाले थे। हम आज लेने वाले बन गए। अल्लाह ताला ने नबी के ज़रिए तकरीबन 3 साल तक मदीना वालों की भी तरबियत कराई थी। पहली दफ़ा लेने आए आप उनके साथ नहीं गए, दूसरी दफ़ा लेने गए आप नहीं गए, तीसरे साल आपने कहा अच्छा ठीक है आएंगे। तरबियत थी, बैत अकबा सानी जो हुई थी पूरी तरबियती नशिस्त थी, ट्रेनिंग कोर्स था कि सोच लो उस वक्त भी अब्बास बोले थे, हालांकि मुसलमान नहीं हुए थे अपने दौर में, लेकिन उन्होंने कह दिया था अपने रिश्तेदारों को कि सोच के लेके जाना, यानी मदीना लोगों का कि तुम क्यों इसको लेके जा रहे हो, हमारी दुश्मनी अलग बात है लेकिन हमारा भतीजा। इतनी रवादारी थी उनके अंदर, कुफर पे भी थे फिर भी मदद करने के लिए तैयार थे, कहा ये नहीं अगर कल छोड़ना है इसको ले जाके तो आज ही छोड़ दो। लेकिन वो सहाबा कैसे थे, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हम इनको थोड़ी लेके जा रहे हैं, हम तो अपने मकसद को लेके जा रहे हैं, हम तो अपने मुस्तकबिल को सिक्योर कर रहे हैं, हम तो अपने लिए दीन और ईमान लेके जा रहे हैं। देखिए अगर अल्लाह के नबी से सिर्फ शख्सी मोहब्बत होती, खानदानी मोहब्बत होती, कोई कारोबारी ताल्लुक होता, बिजनेस डील होती, 4 दिन में दिल भर चुका होता। कोई भी बुनियाद इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती किसी गिरोह के काम करने में जितनी मकसद से मोहब्बत, लिल्लाहियत। उनको पता था अल्लाह के नबी के जरिए अल्लाह ताला हमारा मुकद्दर बदल रहा है, ये जगह यसरब से बदल के मदीनतुन रसूल बन रही है। कल तक किसी ने नजरें नहीं उठाई थी उस शहर पे कि ये क्या छोटी सी खजूरों की जमीन अब दुश्मनों की तोपों का रुख उधर होने वाला है। उन्होंने अपनी नस्लों का सौदा किया था और फिर अल्लाह ने देखिए वहां से क्या खैर फूटी कि पूरी दुनिया में इस्लाम आ गया। और कुर्बानी सिर्फ माल की नहीं दी उन्होंने, जज्बात की कुर्बानियां दी, वक्त की कुर्बानियां दी, रिश्तेदारियों को कुर्बान कर दिया, बीवियां तक पेश कर दी कि अल्लाह एक बीवी मेरी आप ले लें, मैं तलाक दे देता हूं, जो आपको पसंद है फिर उसके बाद आप उससे शादी कर लें। अपने मुहाजिर भाई को अंसार ने कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने कारोबार रख दिया कि आप जाइए आधा कारोबार आप ले लें। आज तक आसमान ने ये बातें नहीं सुनी, कोई ताना नहीं मिलता, ये मुहाजिर थे आगे हमारे मुल्क में लूटने, जहां से गुजरे ये मुहाजिरों के बच्चे हैं, ये अफगानियों के बच्चे हैं, ये ईरानियों के बच्चे हैं, कोई पुकार नहीं, इज्जत के साथ हुआ। और जब मुहावाखात मदीना हुई, थोड़ी सी आपको इसकी भी झलकियां दिखाती हूँ ताकि अपने आप को वहां महसूस तो करें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए 5 दिन तक, कहते हैं कि 5 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस तय हो गया था, तकरीबन 186 लोग मुहाजिर बन के मदीना में आए थे, हर चीज का आधा आधा उनको दे दिया गया, साद बिन रबी थे उनको अब्दुर्रहमान बिन औफ का भाई बना दिया गया, हाँ उनका पनीर का कारोबार था, इतनी वुसत थी, कहते हैं कि 700 ऊंटों पर सामान लेकर जाते थे। लेकिन हजरत यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ को कहा कि आधा मेरा ले ले, लेकिन इन्होंने क्या कहा, जजाकल्ला खैर, दल्लूनी अला सूकहा, सूकी मुझे बाजार का रास्ता बता दें, कारोबारी शख्स से मेहनत करूंगा, जाके कमा लूंगा। वो क्यों उनका पैसा लेने थोड़ी आए थे। अगर देखिए देने वालों के दिल बड़े थे, बुलाने वालों के दिल बड़े थे, तो आने वाले भी कोई माल के लिए नहीं आए थे, कोई भूखे नंगे नहीं थे, सब कुछ था उनके पास। कहा नहीं बाजार का रास्ता बता दें। कहा अच्छा वो रखा है। और वहां गए, कुछ लेन देन किया, इधर की चीज लेके उधर से बेची, कुछ पैसे लिए, और कुछ ही देर में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी। ये इनकी बात है कि कारोबार किया पनीर का, अल्लाह ने इतनी वसत दी कि ऊंटों पे इनका सामान जाता था। और अल्लाह के नबी ने एक दिन देखा कि खुशबू आ रही है कपड़ों से, रंग लगा हुआ है। कहा किधर गए, क्या शादी कर ली। कहा अच्छा मुझे बुलाए बगैर ही, लो हमें बुलाए बगैर अब शादियां होने लग गई। नहीं कहा अच्छा, अवलिम बिशाते, वलीमा कर लेना चाहे एक बकरी का करना। कितना प्यार था, कोई गिले नहीं, कोई शिकवे नहीं। उनकी जिंदगी का मकसद शादियां नहीं थी, मंगनियां नहीं थी, बच्चों के मुस्तकबिल नहीं थे, जॉब नहीं थी, कैरियर नहीं था। उनकी जिंदगियों का एक ही मकसद था कि अल्लाह का नाम बुलंद हो। आज का मुसलमान इस मकसद से आ रही है, इसलिए ये बातें अजीब लगती हैं, इसलिए ये कुर्बानियां बेकार लगती हैं, इसलिए आज का मुसलमान फनेटिक लगता है, एक्सट्रीमिस्ट लगता है कि ये क्या तर्ज जिंदगी है भाई। रोज औरतें घर से निकल जाए, हाँ जॉब के लिए निकलें शौक से, हम खुद छोड़ने जाएंगे, हम बच्चे पालेंगे, हम रूखी सूखी खा लेंगे, हम टोस्ट और चाय ले लेंगे, हमें पराठे नहीं चाहिए, जाओ कमाओ, क्योंकि रोज आओगी तो कुछ हाथ में आएगा ना। यहाँ तो जाने वालों को साथ देना भी पड़ता है, हर कुछ दिन के बाद अब मुतालबा होगा कि हमें पैसे चाहिए, हमें खर्च चाहिए, हमें कैंटीन के लिए चाहिए, हमें फीस के लिए चाहिए, हमें बुक्स के लिए, अब ये कौन करे। लेकिन उस दौर की कहानियां अजीब है। मैं तो जब सीरत पढ़ती हूँ तो बिल्कुल डूब जाती हूँ उसमें। मेरा दिल चाहता है कि वक्त पीछे जाए, वक्त का पहिया पीछे। और जैसे कहते हैं ना, एक शीशे से देखी हुई चीज स्क्रीन पे और एक आंखों के से देखी में फर्क है। तो उस दौर में जाके वो देखें वो लोग थे कौन। शायद इसीलिए कोई तस्वीरें महफूज नहीं उनकी। ये भी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह चाहे तो क्या ना करे। क्यों कि आज वो सहाबा की तस्वीरें ही होती तो लोगों ने उन्हीं के नाम पे बुत शिर्क शुरू कर दिया होता। ये थे वो लोग। आपको होता है कि जब मुहाजरीन और अंसार को भाई बनाए, सारे पूरे हो गए, लेकिन हजरत अली के लिए कोई ना बचा। अकेले थे, उनके बदले में उधर कोई था नहीं, क्या किया फिर, किसी को पता जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बने। आपने कहा कि अली तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो मूसा और हारून को थी आपस में। भाई थे, ये भी चचा जद भाई थे। अब बना लिया, अब क्या करें, चलो आओ अब तुम तो नबी के भाई हो, बैठो इधर गद्दी पे बैठो और तुम्हारे लिए भी एक स्टेज लगा देते हैं। कहा नहीं उठो, चलो एक दिन तुम कमाने चलो, तुम कमाओगे और दूसरे दिन मैं कमाने जाऊंगा। हजरत अली ने कहा अल्लाह के नबी, आपके पास इतने काम है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कोई अब आपका वो मामला थोड़ी रहे, पूरी एक सल्तनत का इंतजाम चलाना है, मैं कमाऊंगा दोनों, आपका भी दिन मैं कमाऊंगा लेकिन आपको दूंगा। आपने कहा चलो ठीक है, यानी आपने कबूल कर ली कि वाकई अगर मैं वो काम भी करने लग जाऊं जो कोई और कर सकता है तो फिर ये काम कौन करेगा। तो लिहाजा फिर हजरत अली के साथ है। तकसीम हुई, तरजीहात की बुनियाद पर हुई, जरूरत की बुनियाद पर हुई। इस्लाम ने कैसे टैकल करना सिखा दिया कि अगर सैलाब आ जाए कोई किसी से एड ना मांगे। पाकिस्तान में सैलाब आया, मिसाल दे रही है, 2 करोड़ लोग मुतासर हो गए। अमेरिका में एड दे दो, चाइना एड दे दो, नॉर्वे एड दे दो, नहीं नो थैंक्स, बस एक ऑर्डिनेंस पास कर दे वहां का हुक्मरान। 16 करोड़ में से 2 करोड़ पे अगर सैलाब का पानी फिर गया, 14 करोड़ के लिए एक कानून पास हो जाए कि चलो तुम में से 4-4 लोग लेके एक एक बंदे को करो तुम स्पॉन्सर। जरूरत पड़ती है एड की, इतनी बेइज्जती होती, इतनी मजलूमी आती। देखिए हमें नहीं अल्लाह से लेना आता, हमें अपने मसले हल करने भी नहीं आते, नहीं सीरत से मदद लेते ना। अगर कल हिजरत हुई थी मक्का से मदीना, आज तो हर चौथे दिन की बात है। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेहनत करते, सारा दिन जाके मजदूरी करते, जिसके बदले में 16 खजूरें इनको मिलती, खुरमे कच्ची खजूरें, 8 आपको दे देते और 8 खुद इस्तेमाल करते, खाई रूखी सूखी, कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर, लोगों की मजदूरी करते, किसी का कुछ घर बन रहा था, किसी का कुछ, तो जाके वहां पानी भर देते, वहां ईंटे लगा देते। ये होते हैं तारीख साज लोग। جس ملک کے رہنما اتنی محنت کرنے والے جو جس کو کہیں کہ خود زمین پہ سونے والے ہوں وہی دوسروں کو جگا سکتے ہیں, اور جو خود کمفرٹرز میں اور نرم گدوں میں ہوں گے وہ کیسے کام کریں گے. آج ہم لوگ باتیں کرتے ہیں, اللہ اکبر, آج مسلمانوں کی دوستیوں کے معیار کیا ہیں کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا ملو, حتیٰ کہ جنازے میں بھی اس کے ہی شریک کریں گے جنہوں نے ہمارے گھروں کے جنازوں میں شرکت کی. ہماری تو ایسے لگتا ہے کہ مدد کے پیمانے ہی بدل گئے. اسلام نے مقاصد کی خاطر رشتہ داریاں قائم کی, ہم نے نام اور نسب کے ناطے کی قربانی کے درجوں کی بات. اللہ کہتے ہیں اولائک ہم المومنون حقا, سچے مومن یہ ہیں. درجوں کی بات ہے, گھر چھوڑے تو انہوں نے گھر پیش کیے. ہر دور میں قربانی کے اس مقام پر جانے والے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتے ہیں اصل میں کسی بھی سوسائٹی کی کریم, وہ ہوتے ہیں اصل میں ان لیڈز, وہ ہوتے ہیں وہاں کے ہیروز. ان کو فالو کیا جائے تو پورے معاشرے کی کہانی درست ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف حالات جو ہمارے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ رحم کر دے ہم پہ. پھر ایسے حالات بھی آئے کہ جس میں پاؤں پہ چیتھڑے باندھ کے بھی جہاد کرنا پڑا تھا, کیے, پٹیاں باندھی, ذات الرقا, چیتھڑوں والی جنگ ہے اس کا نام, پورا ایک غزوہ ہوا, پیدل چل کے مسلمان گئے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے پھر بھی گئے. یہ نہیں کہا سوری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر پہ اپوائنٹمنٹ ہے, پاؤں کا کوئی مرہم لینے جا رہے ہیں, پھر گئے, نہیں چل سکے, جب دیکھا چلتے چلتے پاؤں چل گئے تو پٹیاں باندھ لیں. ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ غزوات میں ہمارا یہ حال ہوتا تھا کہ چھ چھ لوگ ایک ایک اونٹ کے اوپر سوار ہوتے, ایک چار چل رہے ہوتے تو دو بیٹھے ہوتے, پھر باری آتی چل چل کر پاؤں پر پٹیاں پڑتی. ذرا سوچیں آج ایک دن پاؤں پہ چھالا پڑ جائے اللہ کے راستے میں آتے ہوئے, ایک دن ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے, ہمارے گھر والے ہمیں آ کے چھڑوا لیں گے ادھر سے کہ ہماری بچیوں کو آزاد کر دو, کیا مشکل ڈال دی تم نے ہماری عورتوں پہ, پتے اور ٹڈیاں کھانی پڑی. یہ وہ گروہ تیار ہو رہا ہے جو لوگوں کو جینا سکھا رہا ہے, جو لوگوں کو مقصد کے لیے جینا سکھاتا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے, ایک وقت کھانے کو نہ ملے نا تو کھانے کو دوڑتے ہیں لوگوں کو, دو وقت بھوکا رہنا پڑے تو ساری نمازیں ختم, کہتے ہیں آنکھیں باہر آئیں گی نمازیں کون پڑھے, روزے کی حالت میں اب کون اور کام کرے, روزہ رکھ لیا یہی بہت ہے, نمازیں پڑھ لیں گے جب فارغ ہوں گے. ہم اپنے گھر بناتے ہیں, انہوں نے اپنی تاریخیں بنائیں, ہم اپنے گھروں کی فکر کرتے ہیں, ان کو اللہ کے گھروں کی فکر تھی, اس کے باوجود بھی ہم اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جس میں صحابہ گئے. سچا ایمان تبدیلی پیدا کرتا ہے, فکریں سب کو لاحق ہوتی ہیں لیکن سوچ بدل جاتی ہے. ایک کو فکر کیا کہ گھر نہیں بنا ہوا, صرف اس لیے کوئی قرآن سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں اب گھر بنوانا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مجھے چھٹی لینی پڑے گی, اب میں کورس کنٹینیو نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اپنا گھر بنوانا ہے. کہاں بنوانا ہے یہ بھی تو کوئی پوچھے. اللہ اکبر, اولائک ہم المومنون حقا, بہت تھوڑے ہوتے ہیں ایسے لوگ کسی بھی معاشرے میں, اسی لیے اجنبی لگتے ہیں. بھیڑ جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہوتی ہے اس لیے سب کو اچھے لگتے ہیں. اسلام تو کبھی ایک چیز چھوڑنے کو کہتا ہے, کبھی ایک لینے کو کہتا ہے, کبھی یا تو آپ کو مہاجر بننا پڑے گا, کبھی انصار بننا پڑے گا, پھر ملے گا ٹائٹل اولائک ہم المومنون حقا. ایسے لوگ مثالیں قائم کرتے ہیں, دیکھتے نہیں کہ کوئی کام کرے تو ہم کریں, سوچ سوچ کے چلنے والے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں, سوچ سوچ کر دینے والے نہیں دیتے, ڈیسائیڈ کرنے والے جکو تکے کا شکار نہیں کر سکتے. کتنی شکایتیں ہوئی ہوں گی اس پورے مرحلے میں, آپ سوچیں جہاں 10 لوگ جمع ہو جائیں شکایتیں شروع ہوتی ہیں, جہاں اتنے سینکڑوں لوگ تھے شکایتیں ہوئیں, ایک موقع نہیں آتا کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یہ میرا کس سے آپ نے بھائی چارہ بنا دیا, مجھے تو وہ فلاں امیر سردار کا بنا دیں. ایک تاریخی روایت نہیں ملتی کہ کسی انصار نے اس پہ شکوہ بھی کیا ہو, مہاجر نے یا انصار نے, کہ مجھے اپنا پیر نہیں پسند. دل کٹے ہوئے تھے, ایسے لگتے ان کی عقل ہی نہیں تھی, سمجھ نہیں تھی, سوچ نہیں تھی, کند ڈف ڈم. یہ ہوتی ہے اطاعت, یہ ہوتی ہے سبمیشن, یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کو ماننا. اور ایسے ہی گروہ پھر تیار ہوا کہ بعد میں نہیں ٹوٹے, اتحاد ہوئے, شکایتیں بھی ہوئیں ٹوٹے نہیں, کبھی دینا پڑا, دیا ہوا اعزاز چھن بھی گیا, کسی کو لیڈر بنایا ہوا تھا پکڑ کے پیچھے کر دیا, پھر بھی نہیں لڑے ہٹے. آپ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید ساری زندگی لیڈر رہے, پہلے کفر کی طرف سے تھے, پھر اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کی طرف سے لیڈر ہوئے, लेकिन एक मौका ऐसा आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में कि इंतहाई बड़ी फतह की उम्मीद थी, तो हज़रत उमर ने खालिद बिन वलीद को निकाल दिया सिपा सलारी से, आम अदना सहाबी की लसफ में खड़ा किया। क्यों? कहा कि अगर ये फतह भी इनके नाम पे चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके दिल में तकब्बुर आ जाए। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि किसी ग्रुप लीडर से कहा जाए कि वो बैठ जाएं पिछली सफ में और जिनका कल तक वो सबक सुनती थी वो ज्यादा अच्छी हैं, उनको कह दिया जाए उनका सबक सुने। हम तो ये कहते हैं ना, करवाया क्या हमसे, हमें तो चंद चेहरे दिखते हैं ना सामने बैठने वाले, हम में से कौन है कि जो ये सोच रहा हो कि शुक्र है अल्लाह के उसने तौफीक दी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बंदे को तौफीक मिल जाए अल्लाह के रास्ते में कुछ करने की। किसी को जूतियां भी सीधी करनी पड़ जाए ना तो वो कहे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इधर जॉब तो दे दी, मैं जूते सीधे कर लूं, मैं चादरें बिछा लूं, मैं बाथरूम साफ कर लूं और मुझे सिपाही बना के दरवाजे पे खड़ा बिठा दिया जाए ना, जहां से हवाओं के झोंके भी आए और गर्मी और धूप भी आए, मैं बैठा हूं मेरे से नहीं सुना जा रहा फिर भी बैठा हूं, और अल्लाह तू कह दे तो आके सबके सामने बैठ के पढ़ाना भी शुरू कर दूं। सब बराबर है हम में से, कोई ऊपर नीचे नहीं। तकवा आगे करेगा क़यामत के दिन, पढ़ाने वाले नहीं आगे होंगे, बाज दफा सिर्फ बाथरूम साफ करने वाले आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि तकवा बहुत था, क्योंकि जिस बात की कमिटमेंट की थी कि लोगों को साफ सुथरा माहौल देंगे वो कायम रखनी है। मेयार फर्क है, कोई जन्नत का सर्टिफिकेट लेके अपनी जेब में ना आए। और ये वो ईमान होता है जिसको अल्लाह सच्चा ईमान कहते हैं, अपने फायदों को छोड़ दिया लेकिन उम्मत बने, फर्द नहीं बने, बिखरे हुए पत्ते नहीं थे जो लोगों के पाँव में आके मसले जाते हैं, वो दरख्त के साथ जुड़े ही रहे, सदा बहार थे। इज्तमाईयत के लिए खुद को खोना पड़ता है। उम्मत क्या होती है? एक टीम होती है ना। आज उम्मत कहाँ बनेगी, छोटी सी टीम नहीं बनती। 10 लोग अगर ये कहना कि मुझे ही नुमाया कर दिया जाए तो बताइए कि काम कैसे चलेगा। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे जाएगा ना, कोई काम अल्लाह के रास्ते काला और घटिया नहीं होता। जिसको अल्लाह ने अपने रास्ते में निकाल लिया वो आला हो गया। इन अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम। अल्लाह के नबी के दौर में एक औरत थी काले रंग की, हबशी गुलाम, आजाद की हुई, कुछ दिन नजर ही ना आई, सफाई करती थी ये मस्जिद नबी की। आप एक दिन आए, कहा वो औरत किधर है? कहा अल्लाह के नबी कल रात उसका इंतकाल हो गया। कहा अच्छा, फिर? कहा बस हमने कफन दफन दिया और जनाजा पढ़ा के दफन कर दिया। कहा मुझे क्यों नहीं बताया? कहा हमने कहा आपको क्या तंग करें, रात के वक्त आप काम काम करने वाली औरत के लिए एक लीडर को उठाएं। कहा दल्लूनी अला कब्रहा, मुझे बताओ उसकी कब्र किधर है। फिर आप गए और आपने वहां जाके दुआ मांगी। झाड़ू देती थी लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको कितनी इज्जत दी। तो असल चीज तौफीक है, अल्लाह ने हमें सीखने की तौफीक दे दी, इस पे शुक्र करें। कोई ऊपर बैठे, कोई नीचे बैठे, किसी को कुछ अच्छा मिला, किसी को कम मिला, ये सब सानवी चीजें हैं। और जब हम छोटी छोटी चीजों को बहस बनाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे झगड़े करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, अपनी मर्जी नहीं, हम तो हर चीज में अपनी मर्जी करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन मुसलमानों का एक अमूमी मिजाज है। हम कहते हैं हमें हमारी चीज मर्जी की चीज मिले, अगर चीज हमारी मर्जी की नहीं तो हम नहीं कर रहे काम, वो पेपर हमारी मर्जी का। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि चॉइस ली जाए ना, कि टेस्ट बनाने से पहले पूछना लिया जाए कौन सी आयतें हैं, तो कितने ही और लोग टेस्ट देने वाले आ जाएंगे जब नहीं देते होंगे खौफ से। हमारी मर्जियां नहीं चलेंगी, ये मर्जी छोड़ना ही असल में उलाइका हुमुल मोमिनून हक है। सच्चा ईमान बंदे को हैंड्स अप कर देता है, हाथ बंधे हुए हैं, आंखें झुकी हुई है, अल्लाह के आगे वही झुकता है जो अल्लाह की किताब के लिए झुकता है। अपनी जो आप इस किताब के सफर में अपने आप को क्रश कर रहे हैं ना, अपनी नींदों को कुर्बान कर रहा है, अपने अपनी पसंद नापसंद को कुर्बान कर रहा है, अपने पहनने ओढ़ने को कुर्बान कर रहा है, उसको जो ईमान मिलेगा फायदा होगा। इसलिए अपने आप को मूव अप, आगे और बढ़े, कोई सुस्ती नहीं, कोई इंसान अपने ऊपर कोई खराबी ना करे। मेरे लिए तो कोई कानून नहीं, मेरे लिए कोई रूल नहीं, मैं लिखूं ना लिखूं, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरे पास किताब हो ना हो, मुझे कोई ना बुलाए, सॉरी करना है तो हमारी मर्जी करें, नहीं करते तो खुदा हाफिज़, हम नहीं आ रहे, और मर्जियां करने वाले रहते भी नहीं फिर। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह से दुआ करें, मैं तो अपनी फिक्र करती हूँ सबसे ज्यादा, कि चार लोग अगर कहने लग जाते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, तो कहीं हवा ना भर जाए दिमाग में। जो जितना ऊंची बैठा होता है, गोली चलती है सबसे पहले उसको लगती है, नीचे बैठे हुए झुक जाते हैं। ये जगह बड़ी खतरनाक है, इस जगह आके बंदे को गम लग जाता है, हर वक्त का गम लगता है। कोई छोटी बात है जिम्मेदारी लेना, आप सोचें जरा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ एक पायलट की हल्की सी गलती की वजह से पूरे जहाज के लोग मर जाते हैं। एक उस्ताद, एक लीडर, एक ग्रुप लीडर, एक मैनेजिंग शख्स, उसकी हल्की सी गलती, उसकी हल्की सी सुस्ती पूरे सिस्टम को सबोतास कर देती है। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे ईमान जमा दे। नफा के नुकसान, गर्मी के सर्दी, बस अल्लाह तो हमारे गुनाहों की माफी कर दे। व रिज़्क़ुन करीम, करामत वाला इज्जत, अपने आप को दूसरों की खुशी का सबब बनाए। और कोई कुछ ना करे ना, तो कम अज कम दूसरे को परेशान ना करे। ये एक छोटा सा मेयार एक हदीस में दिया गया कि किसी को अगर कोई कुछ दे नहीं सकता ना खुशी, तो उसको गम ना दे, दुख ना दे उसको। हर बंदा अपने आप को पूछे कि मैंने किसी को दुख नहीं देना, मैंने किसी को तकलीफ नहीं देनी, फिर आप देखिएगा कि ईमान आएगा। और जिस दिन सच्चा ईमान आएगा ना, तो आप वाकई टेस्ट करेंगे। कोई चीज़ खाते हैं ना, तो आप कहते हैं वाह, थोड़ी सी चख के आप कहते हैं बहुत मज़े का टेस्ट है। साथ ही और तलब पैदा होती है, जब सच्चा ईमान अंदर आता है ना, मोमिनून हक का, तो फिर उसका टेस्ट जुबान पे भी आता है, कानों को भी मिलता है, दिल को। और एक अजीब दुनिया दिल की बन जाएगी, ऐसे लगता है अल्लाह ताला बार बार इनकी बातें कर रहे हैं। वल्लज़ीना आमनू मिन बादू, ये है बाद में आने वाले, लेट एडमिशन। और वो लोग जो ईमान लाए, मिम बाद, उसके बाद, अब ये एक और ग्रुप पैदा हो गया, बाद में ईमान लाए, सोचते रहे, पहले नतायज देख रहे थे। एक होते पहले दिन कहते सुभान अल्लाह, जी दीजिए, करिए ये काम हमारा, लाए हम ये करते हैं। और कोई कहते पहले सारे कर लें, देखते हैं कुछ बचता है कि नहीं, कुछ किसी का नाम आता है कि नहीं। लेकिन ये लेटर ऑन एडमिशन है, फिर क्या वाह हा जरू, फिर हिजरत भी कर ली आखिर, व जाहदू, फिर जिहाद भी कर लिया, माकुम तुम्हारे साथ, फौलाइका मिनकुम, तो अब वो भी तुम में से ही तो हैं। ये हैं वो लोग जो सुलह हुदैबिया तक मक्का में फंसे हुए थे। अभी दिल खोटा है, मुझे तो ऐसे लगता है ये कुरान आए ना, यकीन करें ये आयतें कितनी बार पढ़ी हुई हैं, और इनको आप पढ़ते हुए मुझे एक और ही मजा आ रहा है। कुछ लोग देखते रहते हैं, मुंह देखते रहते हैं, अभी नहीं, जरा सोच लें, अभी सोच लें, पहला पारा गया वो नहीं आए, दूसरा पारा गया वो नहीं आए, तीसरा गया वो ना आए, सोच सोच सोच, जब देखा कि अब तो सारी दोस्तें चल पड़ी, चलो अब मैं भी चलती हूँ, अब तो सारी बहनें आ गई, मैं घर में रह के क्या करूंगी, मैं भी चलती हूँ, सारी दोस्त, सारी सहेलियां आ गई। ये वो लोग होते हैं जो थोड़ी देर के बाद आए। अब इस्लाम खुल रहा था, फतेह मक्का असल में इस्लाम का अरूज था, सुबहान अल्लाह, लेकिन देखने में इतनी बड़ी शिकस्त थी कि जाहिर भी इन लोग तो पहचान ही ना सके, लेकिन लोगों का पता चल गया था अब नहीं को रोकेगा, अब इस तूफान के आगे से बंद डालने छोड़ दो, तुम भी बह जाओगे, जो बचता है बचा के अपनी जान बचाओ। हाथ पांव पड़ गए थे लोगों को, जो बहुत मारूफ थे अपने वक्त के दौर में, मक्का में सरदारियां कायम की हुई थी, मजहब के नाम पे बड़ी धूम धड़का था, सब दुम दबा के भाग गए। और आज भी क्यामत तक के लिए अल्लाह का यही वादा है, सच्चा दीन और कुरान की तबलीग बगैर किसी लालच के, इतना बड़ा हथियार है दुश्मन के आगे कि इसके आगे कोई नहीं बचता। फिर सारे आ गए, अब दिल में सवाल पैदा होता है, करें क्या भाई, अब इनका क्या करें, कल ले लो इनको, फौलाए कम इनको। पता क्या चलता है कि कुरान की तरफ और इस्लाम की तरफ आने वालों के एडमिशन कभी क्लोज नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि अब एडमिशन क्लोज, लेट कमर्स को भी ले लेंगे, 10 बारों के बाद वाले को भी ले लेंगे, 15 वालों को भी ले लेंगे। एक बड़े दिलचस्प वाक्य हुआ, मैं आपको सुनाती हूँ, आप में से जो लोग ऑनलाइन पे सुनेंगे वो तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अभी पिछले ही वीक हमारा नूरुल कुरान क्लास जो है उसका कोर्स पूरा हुआ है, शाम के वक्त में जो चलती थी, अमेरिका का टाइम शाम का आता था, तो उसकी आखिरी क्लास जो मैंने यहाँ से लाइव की रात तकरीबन 2-2:30 बजे, तो जब मैं क्लास कर चुकी, ख़त्म की, बहुत सब रोए धोए जो भी आखिरी दिन में होते हैं, और पिछला हमने पूरा अपना वक्त याद किया, मैंने शुरू कहाँ से की थी, और मुझे उस दिन पता भी नहीं था कि मैं नॉर्वे से करूँगी, और दिस एंड दैट। फिर कुछ लोगों ने मुझे याद भी दिला दिया कि उस्ताद साहब को पता है कि जब आपने इस कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था तो बहुत उम्मीद भी नहीं थी, गैर मुतवक्के तौर पर हमें बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उसमें आया था, पहला कोर्स था ये हमारा ऑनलाइन का बाज़ाब्ता ना, तो हम लोग सभी खुश थे उसमें और परेशान थे करें क्या। तो कहती हैं कि आपने उस्ताद साहब को याद है पहले दिन अपने कोर्स में जब इंट्रोडक्शन था तो आपने बताया कि हमें एक एक फॉर्म जो है वो नॉर्वे से भी आया है, और आपने साथ ये जुमला बोला था कि मुझे ये भी नहीं पता कि नॉर्वे है कहाँ। ये इस कोर्स के पहले दिन की बात थी, और आखिरी दिन जब मैंने ये जुमला बोला कि मुझे नहीं पता था पहले दिन ये कोर्स शुरू करवाते हुए कि इसका इख्तिताम मैं नॉर्वे से करवाऊंगी, तो मुझे उन्होंने सुनाया कि देखें आज आपको ये नहीं पता था तो ये भी नहीं हमें पता कि आगे हमने कहाँ जाना है। तो उस वक्त फौरन मेरे दिल में आया कि अल्लाह जैसे उस दिन मुझे ये नहीं पता था आज मैं नॉर्वे में होंगी, तो अल्लाह एक वो भी दिन ले आ कि हम जन्नत में हों और आज हमें उसका पता ही नहीं। तो खैर जो मज़े की बात सुनानी थी वो तो पीछे रह गई, और औरतों का यही मामला होता है, असल बात पीछे रह जाती है। जब मैं करवा के फिर मैंने सोचा कि चले अब फजर का वक्त तो करीब या सोना क्या, तो मैं ईमेल चेक करने लगी। तो ईमेल जब मैंने चेक की ना, तो उसमें जब भी कोई फॉर्म फिल करता है तो उसका साथ मुझे भी आता है साथ कुछ उसका यानी रेफरेंस में ना, तो उसमें एक नया फॉर्म आया हुआ था। जब मैंने खोला तो वही कोर्स जो ख़त्म हुआ है उसका किसी ने वेबसाइट से फॉर्म फिल करके भेजा। ये शायद ऑनलाइन वालों को भी नहीं मैंने बात शेयर की, तो मैं इतना मुझे प्यार भी आया अल्लाह पे। मैंने कहा देखो आज ये कोर्स पूरा हुआ, और उस बेचारी ने पता नहीं क्या सोच के किया है या कोई और कर रही थी ये कर दिया, क्योंकि वो फॉर्म जब ऑनलाइन पे होते हैं तो उसमें ये नहीं पता चलता कि अब इस वक्त ये किस बारे पे है ना, क्योंकि शुरू में डाल दिए जाते हैं। तो आखिरी दिन भी उसका फॉर्म आया, पता नहीं 300 कुछ नंबर था उसके फॉर्म का। जी बिल्कुल, जज़ाकअल्लाह खैर कि यानी बस मैदाने जंग में ही आए थे अल्लाह के नबी के पास और इस्लाम कबूल किया, तो कहा क्या ऐसे इधर कैसे आए थे, कहा बकरियां थी कुछ यहूद की मेरे पास, कहा जाओ पहले वापस करके आओ। ये नहीं कहा कि यहूदी हैं पकड़ो इनसे ही तो जंग लगी हुई है, नहीं, कोई चोर दरवाजा नहीं लगते थे। वो गए और बकरियां वापस की और आके मैदान जंग में गए और शहीद हो गए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये जन्नत में, जब लाशें आई शोहदा की तो उसमें एक नया चेहरा था, साहबा ने नहीं पे देखा था, कहा ये पता नहीं कौन है। अल्लाह के नबी के पास ने कहा अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहा कि सिर्फ एक अमानत की अदायगी यानी एक कमिटमेंट की वो पूरा करने की वजह से अल्लाह ने इसको जन्नत दे दी। तो दुआ करें कि अल्लाह हमें जोड़ ले इसके साथ, फौलाई का मिनकुम वो भी तुम्हारे ले लो। कई दफ़ा क्लासेस में हम लोग यानी ये चीज़ देखते हैं कि अच्छा आप इनरोलमेंट बंद कर देते हैं, बाद में आने वालों को पता नहीं होता, जैसे अब आप माशाल्लाह इतने महीने से आ रहे हैं तो अब आप तो इस चीज़ को समझ गए ना, रूल्स रेगुलेशन को। अब अगर इसी हॉल में और एकदम कोई 150 लोग आ जाएं तो एकदम गड़बड़ होगी ना, तो इस तरह नए आने वाले ट्रबल मेकर हो जाते हैं, उनका कसूर नहीं होता। इसी से वो ईमान का फ़र्क भी पीछे हमने देखा कि कोई एक के बदले में 10 के बराबर हो जाता है, कोई 2 के बराबर होता है। तो लेकिन ये कि जो बाद में आने वाले होते हैं वो बाकी जगहों में तो रुक सकते हैं, लेकिन मेरा लिए कहीं भी कोई कुरान का कोर्स हकीकत में कर रहा है ना, तो वो उसको कभी आखिरी दिन तक भी इनरोलमेंट नहीं बंद करेगा। क्यों? क्या आने दीजिए, कुरान का तो यही मौजा है कि इसको जहाँ से भी आप लेते हैं ये चल पड़ता है, और कोई कुरान उस तरतीब से हम पढ़ भी नहीं रहे जिससे ये नाजिल हुआ था। ये तो सारा बाद में कहीं मक्की सूरत कहीं मदनी को एक स्टोरी तो नहीं है, तो कहा इनको भी ले लो। व उलुल अरहाम इबादुहुम औला बिबादिम फी किताबिल्लाह, और रिश्तेदार यानी विरसे में एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं हुक्म इलाही के मुताबिक। पहले हुक्म ये था कि जो मरता है उसकी विरासत उसका भाई ले लेगा जो रिश्ता दीन में है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्तेदार ईमान पे आ गए, इस्लाम कबूल हुआ, कहा अब वो कानून खत्म, अब जो मरेगा उसके रिश्तेदार ही उसके वारिस बनेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि ईमान वाले रिश्तेदार होंगे। शुरू में तो भाई यानी मुहाजिर अंसार का और अंसार मुहाजिर का होता था, लेकिन अब वो तरीका मनसूख किया गया, और ये अल्लाह के फैसले हैं, किसी की हक तलफी नहीं करते अल्लाह ताला। इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाले हैं। तो यहाँ पे सूरत अल अनफाल पूरी होती है, सबक भी पूरा और इंतहाई खूबसूरत सूरत है, जिसको पढ़ने के बाद ज़्यादा तड़प लग जाती है कि सीरत को इंसान जल्दी से जल्दी पढ़े। हम सबको अपना बस मुहासबा करना है, क्या वाकई इन सूरतों को पढ़ने के बाद दिल में ईमान आया, सच्चा ईमान आ गया, क्या वाकई बामकसद ज़िंदगी गुजार रही हूँ, सब्र आ चुका, बुलंद अज़म हो गया, अपनी ज़िंदगी को हल्का फुल्का कर लिया। ये सारी चीज़ें जब आएंगी ना ज़िंदगी में तो आसानी होगी। और याद रखिए कि जिनको भी अल्लाह के रास्ते के काम करने होते हैं ना, उनको अपने आप को हल्का फुल्का रखना होता है, खाने भी हल्के खाने पड़ेंगे, कपड़े भी हल्के पहनने पड़ेंगे, हर वक्त मसरूफ, हर वक्त अपने आप को बड़ा रखें। एक बुज़ुर्ग थे, उनके बारे में आता है कि अपने किसी काम में मसरूफ थे, तो कारोबार था बहुत बड़ा, तो किसी ने खबर दी कि वो जहाज़ डूब गया जिस पे आपका सामान था, तो इन्होंने कोई नोटिस ही नहीं लिया, बड़े मुतमईन हुए। बाद में जब काम ख़त्म हुआ लोगों ने कहा कि आपने कोई नोटिस ही नहीं लिया, कहा मैंने तुम्हारी बात गौर से सुनी नहीं, डूबने वाले हैं वो बीच में टेक्स्ट मैसेज नहीं लेते, वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते कि हम क्या करें. हम हर मौके पे काम छोड़ देते हैं. जरा सी खुशी काम छोड़ दो, जरा सा गम काम छोड़ दो, जरा सी बीमारी, जरा सी सेहत काम छोड़ दो. हर मसले का एक ही हल है कि उसको छोड़ दो. देखिए गम पे भी काम ना छोड़ें. कभी कभी कोई गम आता है ना, उस वक्त भी अपने आप को मुतमईन रखा करें, कोई बात नहीं, हर मसला अपने वक्त पे ख़त्म होगा. जिसने आखिरत के मसले को सबसे बड़ा मसला बना लिया, इंशाल्लाह दुनिया के मसले फिर उसको तंग नहीं करेंगे. हमें शीशा नहीं बनना, लोहा बनना है. शीशा हर छोटी सी चीज़ पर टूट जाता है. बहुत सेंसिटिव लोग जो होते हैं ना, छोटी छोटी बातों में रूठने वाले और नाराज़ होने वाले और ख़ुद पे तरस खाने वाले, वो दीन के काम के नहीं होते. शीशा जो होता है, बाज़ दफ़ा जो लगा रहा होता है उसी के हाथ को चीर देता है, जबकि लोहा जो होता है वो पिघलता है और बिल्कुल एक नया रूप ले लेता है. तो अगर हम भी चाहते हैं तो पिछली ज़िंदगी को छोड़ कर इंशाल्लाह अगले रवैयों पर आना है. अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए. सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.